अमेरिका, वाशिंगटन।
मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल, अहम वाक़यात और मसाइल पर मुबस्सरीन और माहरीन के बेलाग तबसरे और तबादला ख्याल। पेश खिदमत है हमारा आज का प्रोग्राम राउंड टेबल।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम है राउंड टेबल। मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरक़ वस्ती के लिए अमन मनसूबा और दुनिया भर से आने वाला रद्द अमल, बिलखसूस फ़लस्तीन और इसराइल की जानब से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए एक दो रियासती एक रोड मैप पेश किया था, हल पेश किया था। इसराइल ने इस मनसूबे का खैर मकदम किया है। ज़ाहिर है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जब सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मनसूबे का ऐलान कर रहे थे वो उनके साथ खड़े थे, जबकि फ़लस्तीनियों ने और फ़लस्तीन ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। सर ट्रंप ने मंगल को व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के हमराह मनसूबे का ऐलान किया और एक तारीखी मौका करार दिया इसको। और उनका कहना था कि यह 100 साल का बेहतरीन ये डील है, मनसूबा है। और इस मनसूबे पर सर ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर ने बताया, ये जाता है कि काफ़ी काम किया है और उसके खदोखाल जो हैं वो जब सामने आए थे उस वक्त ही फ़लस्तीन ने इसको मुस्तरद कर दिया था। यह मनसूबा है क्या? सदर ट्रंप के मुजवजा अमन मनसूबे के तहत जो गैर मुनकसिम यरूशलम है वो इसराइल का दारुल हुकूमत होगा और अबू देस जो कि ईस्टर्न यरूशलम के अंदर है वो फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा कहलाएगा। और अमन मनसूबे के तहत इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान खड़ी की गई रुकावटों को सरहद का दर्जा हासिल होगा। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों ही इस शहर के दावेदार हैं। मनसूबे के तहत किसी भी इसराइली या फ़लस्तीनी को उसके घर से बेदखल नहीं किया जाएगा। लिहाजा 1967 के बाद फ़लस्तीनी इलाकों में कायम की गई जो यहूदी बस्तियां हैं जिन्हें अक़वामे मुत्तहिदा गैर कानूनी करार देती है, अमरीका ने उसे बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। इस पर जो रद्दमल सामने आ रहा है, सऊदी अरेबिया ने, मिस्र ने, कतर ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मंगल के रोज़ एक बयान जारी किया और खैर मकदम किया कि सर डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है वो एक अमन मनसूबे पे अगर जो जो काम कर रही है हम उसका खैर मकदम करते हैं। और कोई भी जो कोशिश है जो अमन की तरफ लेके जा सकती है सऊदी बादशाहत उसका खैर मकदम करेगी। ये वहाँ से आया। पाकिस्तान की तरफ से जो रद्दमल सामने आया है, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि हम दो रियासती हल के हिमायत करते हैं, लेकिन ऐसा दो रियासती हल जो है जो उससे पहले जो इसराइल की यरूशलम की जो हयात है वो 1968 तक ले जानी चाहिए। इसराइल के वहाँ पे कब्ज़े के पहले जो हयात थी वहाँ पे पहले उसको लाया जाए। अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद भी इसी चीज़ के मुतकाज़ी है। उसके बाद जो आबादियाँ हैं जिनको फ़लस्तीनी कबूल नहीं करते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ लिया है। ईरान इसकी मुखालफत कर रहा है। दुनिया के कई जो बड़े मुल्क हैं, यूरोपीय मुल्क हैं, वो ये समझते हैं कि इसके ऊपर इत्तेफाक़ राय होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आलमी बरदरी ने मैं जो इस पर रद्दमल दिया है, मैं थोड़ा सा खाका रखता हूँ इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊँ। फ्रांस ने कहा है कि वो दो रियासी हल की हिमायत करते हैं, अलबत्ता सदर ट्रंप की जानब से पेश करदा मनसूबे का बग़ौर जायज़ा लिया जाएगा। ये फ़्रांस का रिएक्शन था। कतर ने कहा है कि इन कोशिशों को खैर मकदम करते हैं, तमाम फ़लस्तीनियों को रियायत दिए बगैर इस तनाज़े का देरपा हल मुमकिन नहीं है। और ये है, ईरान ने सदर ट्रंप का अमन मनसूबा मुस्तरद करते हुए इसे मज़ीद पाबंदियाँ और धौंस जमाने की कोशिश करार दिया है, स्लैप ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया है ईरान ने इस मनसूबे को। सो एनालिसिस के लिए हम चलते हैं आपके साथ, अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सहर खान ने, सीनियर रिसर्च फेलो विद द केटो इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन बेस्ड ये थिंक टैंक है। प्रोफेसर सलमान अली बैटनी हमारे साथ होंगे, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्तगी, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। और प्रोफेसर इश्तियाक दानिश ये भारत से मिडल ईस्ट इशूज़ के ऊपर उनकी एक्सपर्टी और भारत से वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। डॉक्टर सहर, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, कैसा ये प्लान है, कितनी सोच विचार की गई, इंतज़ामियाँ कितनी इन्वॉल्व हुई, और फिर एक ऐसा मनसूबा जिसको प्लान ऑफ द सेंचुरी कहा गया लेकिन दो फरीकों में से एक फरीक साथ खड़ी है, दूसरी फरीक मौजूद नहीं है और उसके एतराज़ भी अगले ही लम्हे सामने आ गए हैं, कितना ये पायदार हो सकता है और इसको प्लान ऑफ द सेंचुरी क्यों कहा गया या डील ऑफ द सेंचुरी क्यों कहा गया?
सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। ये जो है प्लान, मेरे ख्याल में जो सदर ट्रंप से हमें ज्यादा सरप्राइज نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ شروع سے ہی انہوں نے اسرائیل کا زیادہ ساتھ دیا ہے فلسطینیوں کے مقابلے میں, اور یہ کہنا کہ یہ پلان آف دی سینچری تھا اور اس کو اس طرح سے مارکیٹ کرنا, یہ بھی ایک بہت ٹپیکل ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بات ہے. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی پلان کرتے ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو یا وہ کہیں اور ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سب سے بڑا پلان ہے, سب سے یونیک پلان ہے اور سب سے اچھی چیز ہے. تو یہ تھوڑا بہت ہمیں ان کے ایگو کے بارے میں بتاتا ہے. جہاں تک پلان کی اصل بات ہے, میرے خیال میں ایبسلوٹلی یہ بالکل امبیلنسڈ پلان ہے جس میں فلسطینیوں کو کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے, اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ جو صدر ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اسرائیل کا صرف ساتھ نہیں دیا ہے بلکہ وہ افیکٹولی یہ چاہتے ہیں کہ پیس پروسیس ایسے بڑھے کہ اسرائیل کامیاب ہو اور اس فلسطینیوں کو کچھ نہ ملے, یعنی فلسطین جو ہے وہ پورے وہ پورا یعنی اسرائیلی سیٹلمنٹ کے ان کے درمیان ہوگا, اور جو کوئی بھی چانسز ہوں گے ٹو اسٹیٹ سولوشن کا وہ
تو ڈاکٹر سہر, اس سے پہلے باقی پینلس کے پاس جاؤں, واشنگٹن کا نقطہ نظر سمجھنا ضروری ہے. تو اس میں کیا کوئی کانگریس کی صلاح مشورے تھے, کسی کمیٹی کے, کیا تھنک ٹینکس کی طرف سے کوئی مشاورت کا عمل اس کے اندر نظر آتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے یہ ایک ڈیل ہے یا روڈ میپ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ڈیل آف دا سینچری ہے, سو کن لوگوں نے یہ تیار کیا ہوگا اور کہاں بیٹھ کے کیا ہوگا؟ اس میں کوئی باقاعدہ کوئی مشاورت دونوں فریقوں سے کی گئی ہوگی؟
باقی کہ ٹیکنیکلی تو بالکل میں یہ کہوں گی کہ ماضی میں جتنے بھی یو ایس ایڈمنسٹریشن ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ آپ سمجھیں بہت سے ایکٹرز کا اوپینین لیا ہے اور ان سے کوشش کی ہے کہ وہ الگ الگ اینگلس کو لیں اپنے پلان میں, لیکن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا یہ جو پلان ہے یہ بالکل جیرڈ کشنر جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں, ان کا یہ پلان تھا شروع دن سے اور یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو صدر ٹرمپ تھنک ٹینک کمیونٹی خاص طور پہ, آئی مین آف کورس ڈی سی میں بھی جو تھنک ٹینک کمیونٹی ایک اسپیکٹرم ہے, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل صدر ٹرمپ کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن جو میجورٹی تھنک ٹینک کمیونٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے, اور کم از کم اگر بے شک ٹو اسٹیٹ سولوشن بھی نہ ہو, ایک ایسا سولوشن ہونا چاہیے جس میں فلسطین بھی خوش رہے, کیونکہ جو ابھی تک حالات چل رہے ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہے. لیکن آئی تھنک کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو ایک اینگل تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے, اور صرف ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ ان کو زیادہ طاقتور بنانا ہے ریجن میں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا ایک ایکسسٹینشل کرائسس ہے اور جس میں امریکہ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے.
جی
جی
پروفیسر سلمان علی بیٹھنی ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر اشتیاق دانش ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر سلمان, آپ کی رائے لینا چاہیں گے, واقعتاً یہ ڈیل آف دا سینچری ہے یا ایک یک طرفہ پلان ہے اور اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟
سب سے پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس طرح کے جو سلوگنز ہیں یا اس طرح کے جو برانڈ نیمز ہیں, اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سفارتکاری کا ایک نیا ایک طریقہ کار سامنے آیا ہے جو یا تو ٹویٹر پہ چلتی ہے یا تو اس طرح کے جو برانڈ نیم سے چلتی ہے, اس کا کوئی خاطر خواہ سفارتی اس کے پیچھے لاجک جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو اس کو اس طرح کا نام دینا کہ یہ ایک ڈیل آف دا سینچری ہے, میرے خیال میں بہت ہی مبالغہ آرائی پہ مبنی ہے, کیونکہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ ثالثی کروانا چاہ رہا ہے, ایک طاقتور ملک, تو اس میں سب سے پہلے وہاں کے جو سیاسی حالات ہیں, وہاں کے جو معروضی حالات ہیں, تصویراتی حالات ہیں, اس میں صاف ظاہر ہے کہ امریکی سرکار کی بہت زیادہ جو کمک ہے, کوشش ہے, اور جو ان کا جھکاؤ ہے وہ اسرائیل کی حکومت کی طرف ہے. تو یقیناً اس کے اوپر کسی بھی قسم کا اعتبار کرنا یا اس کو کوئی بہت ہی ایک غیر معمولی سفارتی کوشش قرار دینا شاید انصاف کے منافی ہوگا.
لیکن پروفیسر صاحب, آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب ایک کوئی قضیہ ہو, کوئی تنازعہ ہو, کئی دہائیوں سے چل رہا ہو, حل کے قریب نہ ہو, تو کچھ آؤٹ آف دا باکس جانا پڑتا ہے, سو کیا اس کو آؤٹ آف دا باکس سولوشن کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیں, آپ نے درست فرمایا, آؤٹ آف دا باکس جانا پڑتا ہے, اور ایک بات اس میں یہ خوش آئند ہے کہ کوئی سولوشن کی بات ہوئی ہے یا کوئی سولوشن کا معاملہ جو ہے اس کی طرف بات ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سولوشن کو بین الاقوامی طور پر پذیرائی حاصل ہے. پذیرائی سے میری مراد یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ دیکھا جائے تو اس کو کتنی مقبولیت حاصل ہوگی, جو بین الاقوامی قوانین ہیں وہ کس طرح سے ملحوظ خاطر رکھے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے, آؤٹ آف دا باکس سولوشن میں پریکٹیکلٹی کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. مطلب دنیا میں دیگر جو بڑے مسائل چل رہے ہیں, امریکہ اس میں بھی فریق ہے. اگر میں چھوٹی سی مثال دوں افغان امن عمل کی, تو افغان امن عمل بھی تب آگے بڑھا ہے جب اس میں پریکٹیکلٹی آئی ہے, اور جو دونوں فریقین ہیں وہ ایک ایک سٹیپ پیچھے گئے ہیں. اور پہلے امریکہ کہا کرتا تھا کہ وہ طالبان سے مذاکرات کرے گا ہی نہیں. سو وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی تو سمجھ آتی ہے اور اس میں ہمیں پیش رفت بھی نظر آئی ہے, لیکن اگر یہاں پہ مڈل ایسٹ کی بات کی جائے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جو کہا گیا ہے, اس کی جو ورڈنگز بھی ہے, جو ٹرمپ کا جو پلان ہے اگر اس کو پڑھا جائے, اس کو دیکھا جائے, تو اس میں کافی جس کو کہتے ہیں کہ ایک سٹیٹ کی ایک اگریسو ایک اپروچ نظر آتی ہے کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا, اس کو ایسا ہی تسلیم کرنا ہوگا جیسے ہیں جہاں کی بنیاد ہے. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے اس میں لچک نہیں رکھی. بہتر یہ ہوتا کہ ٹرمپ اپنا پلان دیتے اور ساتھ میں وہ مذاکرات کا آغاز کر دیتے, اور مذاکرات کے آغاز کے بعد کچھ لے کچھ دے, اور اس میں پھر ایک ہمیں آؤٹ آف دا باکس ہمیں ایک راستہ نظر آتا. ابھی کچھ خاطر خواہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ سفارتکاری جو ہے یہ قابل عمل ہے بھی کہ نہیں.
جی پروفیسر اشتیاق دانش صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایکسپرٹ مڈل ایسٹ ایشوز بھارت سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اشتیاق دانش صاحب, آپ کی دانش میں آپ کی دانست میں یہ معاہدہ کیسا ہے, کیا اس کے پروز اینڈ کونس ہیں؟
دیکھیں یہ نہ ڈیل ہے نہ معاہدہ ہے نہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے,
روڈ میپ ہے.
یہ تو دو تین لوگوں کا آپس میں مشورہ کر کے ایک فیصلہ کیا ہے جس کو وہ جو ہے فلسطین پہ نافذ کر رہے ہیں, امپوز کر رہے ہیں. معاہدہ تو وہ ہوتا ہے جس میں ساری متعلقہ جو گروپ ہیں پارٹیاں ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور ڈائلاگ کے بعد کسی سیٹلمنٹ پہ پہنچتے ہیں, اسے معاہدہ کہا جاتا ہے. یہاں پہ تو پریسیڈنٹ ٹرمپ نے, ان کے داماد نے, اور ٹو سم ایکسٹینٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد بن سلمان اور یونائٹیڈ عرب امریٹس کے جو وہ ہیں امیر ہیں, یہ چار لوگوں کی اس میں رائے ہے, شامل ہے. اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کی تفصیلات بہت پہلے, یہ خفیہ تھا بھی نہیں, جس کی تفصیلات بہت پہلے جو اخبارات میں انٹرنیشنل پریس میں آ چکی تھی, سب کوئی جانتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی طرف نہ کوئی قدم ہے نہ کوئی سنجیدہ کوشش ہے, بلکہ دو ایک صدر اور ایک پرائم منسٹر جو مشکلات کا سامنا کرنا ہے الیکشن ایئر میں, وہ اپنی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی کوشش بالکل نہیں کر رہے ہیں. ٹرمپ جن دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں, امپیچمنٹ کا سامنا ہے, نیتنیاہو پہ کرپشن دھوکہ دڑی اور فریب دہی کا الزام ہے, ان کے خلاف بھی کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے اور انڈکٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ. تو یہ دو لوگ جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے, الیکشن کو جیتنے کے لیے, ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک چیز لا رہے ہیں. اور جو ابھی آپ نے تھوڑا سا, میں سن سکا تھوڑا تاخیر سے میں نے جوائن کیا, آپ ورلڈ ریئیکشن بتا رہے, جو ورلڈ ریئیکشن آیا وہ تو اسے آلریڈی ریجیکٹ کر چکا ہے. اور میں نے جیسے کہ کہا کہ تفصیلات تو انٹرنیشنل پریس میں بہت پہلے ہی آ چکی تھی, سو کالڈ ڈیل آف دا سینچری کی, اور اسے تقریباً سبھی لوگ نے ریجیکٹ کر دیا تھا, اور ایکسپیکٹڈ لائن پہ ہی ریجیکٹ لوگوں نے کیا ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ کون لوگ اس کی حمایت کر سکتے ہیں. ایجپٹ کی طرف سے حمایت آئی ہے اور محمد بن سلمان کی طرف سے حمایت ہے, لیکن سعودی عرب کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ وہاں تو جو ایک اوپینین ہے بہت ہی زیادہ اس کے خلاف ہے سعودی عرب میں. چونکہ شاہ آپ سعودی عربیہ نے, انہوں نے تو باقاعدہ ٹیلی فون پہ محمود عباس سے گفتگو کی ہے, اور انہیں یقین دلایا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ جو سمجھوتا جو ہے فلسطینیوں کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے.
جو آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے وہ تین گھنٹے پہلے یہ رپورٹ ہوا ہے, اس میں کہا ہے کہ کنگڈم جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے دی ایفرٹس آف پریزیڈنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ٹو ڈیولپ اے کمپریہنسو پیس پلان بٹوین پیلسٹینین اینڈ اسرائیلی سائڈ, یعنی دونوں فریقوں کے درمیان ایک جامع امن منصوبہ تیار کرنے پہ اس کوشش پہ وہ سراتی ہے ان کو. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں ساجد تارڑ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, لیڈنگ ریپبلکن ہیں, پاکستانی امریکن اور مسلمز فار امریکہ کیمپین کے پائنیئر ہیں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا, میں کوشچن آپ سے فریز کرتا ہوں لیکن پہلے مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں چند سیکنڈ کی ایک بریک لوں اور گفتگو پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے اسفر امام. بات ہم کریں سر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطی کے لیے امن منصوبہ اور رد عمل کیا آ رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں شاید ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد تارڑ صاحب, مسلم فار امریکہ, ہمیں جوائن کر رکھا ہے ڈاکٹر سہر خان نے کھیٹو انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کی وابستگی, پروفیسر سلمان علی بیٹنی قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر اشتیاق دانش, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے. تارڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا پلان جو کئی دہائیوں سے متحارب فریقوں کے درمیان پیس کے نام سے ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں دونوں فریقوں کی ان پٹ نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیجئے, امریکہ اگر اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے تو اس میں بظاہر یہ بھی نہیں لگتا کہ دو جماعتی یا کانگریشنل کوئنسائٹ جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہو. سو کیا سمجھا جائے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پیس روڈ میپ کو؟
دیکھیں, میرا اپنا اوپینین اس پہ ملی جلی ہے, اس میں میں بالکل ایگری کروں گا کہ دوسری پارٹی جو تھی اس کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, ان کی پارٹیسپیشن, ان کا ساتھ کھڑا ہونا ضروری تھا. ان کے بغیر تو یہ اس کو بلکہ کہیں نہیں جا سکتا, یہ ون سائیڈڈ پلان کا ہی نام دیا جا سکتا ہے. لیکن میں اگر ہسٹوریکلی دیکھوں تو ہمیں دوسری سائڈ پہ بھی فلسطینی جو ہیں ان کو اپنا ہوم ورک کرنا ضروری ہے, ان کے لیے بھی, ان کو بھی اگر کوئی ریزنیبل چیز سامنے آئے تو اس کو دیکھنا, اس کو غور کرنا ضروری ہے. میرے خیال میں پچھلے ادوار میں اچھے اچھے پیکجز تھے ان کے لیے, لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے ان کو مینجمنٹ کے ایشو ہیں, ان کو انٹرنل کرپشن کے ایشو فیس کرتے ہیں, اور ایک یکجا نہیں ہے وہاں پہ, حماس کسی اور سائڈ پہ اور دوسرا محمود عباس صاحب, ان کے اپنے انٹرنل کئی ایشوز ہیں جس پہ نہیں, جو کہ ان کو ہونا چاہیے, اور یہی ایک وجہ ہے کہ یہ ٹو سٹیٹ جو ہے جو سولوشن ہے وہ نہیں طے ہو پا رہا. لیکن یہ جو کرنٹ پلان ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مینڈیٹ کا حصہ تھا, اور جو وہ مسلسل اپنا مینڈیٹ کی ہر چیز کو ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے اسی کا یہ ایک سٹیپ تھا کہ اس کو انہوں نے ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جس طرح میں
اس کے لیگل آفیشیل سٹیٹس کیا ہوگا, یہ محض ایک تجویز ہی ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے اس کی کوئی یہ قابل تعمیل تو نہیں ہے نا دونوں فریقوں کے لیے, نہ وہ اس کی کسی ڈیل کا حصہ ہے.
بالکل, دوسرا فریق اس میں باؤنڈ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے بڑے برے طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اور بلکہ کرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ ان کو ایز اے پارٹی کانفیڈینس میں نہیں لیا گیا, اور یہ ون سائیڈڈ پلان جو ہے یہ انہوں نے بنایا. اور بالکل میرے خیال میں یہ آج کی بات نہیں ہے, اسرائیل جو انکنڈیشنل سپورٹ پر اسرائیل جو امریکن فارن پالیسی کا حصہ ہے یہ اسی کی یہ کڑی ہے جو ان کو امریکہ کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ فلسطین جو اگر دوسری سٹیٹ وہاں بنے گی تو فیوچر کس طرح وہ گزارا کریں گے ان کے ساتھ.
میں ڈاکٹر سہر کے پاس اس سے پہلے کہ جاؤں ایک بات, آپ ان کو قریب سے جانتے ہیں تارڑ صاحب, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنے پورے اعتماد کیوں کہ یہ ڈیل آف دا سینچری ہے؟ یہ مانا کہ وہ ایک بڑے ڈیل بریکر اور ڈیل میکر لیڈر کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں, خاص طور پہ آپ نے ان کی ایک امپائر ہے اور ایک بزنس ہسٹری ہے, چیزوں کو انہوں نے انگیج کیا ہے, لیکن یہ اسٹیٹ کے معاملات میں جو یہ کلیم ہے کہ یہ ڈیل آف دا سینچری ہے, یہ درست ہے؟
میں یہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ ڈیل آف دا سینچری, میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے, جو پلان ہے ان کا 80 پیجز کا جو پلان انہوں نے بنایا وہ دیا, میرے اگر مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھا جائے ایز اے نیوٹرل پرسن, اٹس اے ون سائیڈڈ پلان. और इट कैनॉट बी कॉल्ड दिस एज द डील ऑफ द सेंचुरी. मैं आई डिसएग्री विद
दैट. डॉक्टर सैयद खान साहब, इससे पहले कि आपको हम इजाजत दें, आपको अगली मीटिंग में भी जाना है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे इंटरनेशनल इशूज के लिए दुनिया ने बड़े इतफाक के साथ बड़े प्लेटफॉर्म बनाए हैं, अक़वामे मुत्तहिदा उसके लिए मौजूद है, वहाँ से भी कोई एक बात आए तो उसको एक उसकी एक लेजिटिमेसी होती है, या उसकी एक वर्थ होती है. अमेरिका अपने तौर पे किसी भी दो फरीकों के लिए जब ऐसा कोई प्लान लेके आता है तो उसकी उसकी लेजिटिमेसी कितनी होती है, एक बात. और अगर हम इसी प्लान को देखें तो इसकी फेट, इसकी किस्मत, इसका मुकद्दर आपको क्या नजर आता है आगे चल के?
देखिए, असल में अमरीका एट द एंड ऑफ द डे एक ही मुल्क है, एंड अमरीका जो है वो अकेला फंक्शन नहीं करता है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि जो बाकी अरब ममालिक हैं, खासतौर पर सऊदी अरेबिया और यूएई, कि वो इस प्लान का साथ दें, क्योंकि उनके साथ देने के, अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो फिर ये प्लान कामयाब नहीं होगा. तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली अमरीका को जो है बाकी ममालिक की ज़रूरत है. लेकिन ये जो प्लान है, ये जिस तरह से लिखा गया है और ये जो चाहता है प्लान, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा प्लान है जो मिडल ईस्ट को और अनस्टेबल करेगा. तो होपफुली जो दूसरे ममालिक हैं वो इस बात को देख सकेंगे और कोशिश ये करेंगे कि दोबारा प्लान बने और एक ऐसा प्लान बने जिसमें फलस्तीनियों का भी साथ हो और जो उनके डिमांड्स रहे उनके भी कुछ डिमांड्स और सामने आए.
जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद खान, सीनियर रिसर्च फेलो फ्रॉम केटो इंस्टीट्यूट, आप हमारे साथ नहीं, आपका बेहद शुक्रिया. सऊदी अरेबिया से हमें शाहिद नदीम साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर साफी हैं, तजियाकार हैं. शाहिद साहब, बेहद शुक्रिया आपका भी, आपको वेलकम कहते हैं. सऊदी अरेबिया खैर मकदम कर रहा है इस पीस डील का, क्या है बुनियादी तौर पर वहाँ पे किंगडम का रिएक्शन या असेसमेंट इस डील के बारे में कि उसको वेलकम कर रहे हैं, और पब्लिक सेंटिमेंट क्या है?
देखिए, सऊदी मीडिया और सऊदी गवर्नमेंट जो है अभी तक इसमें वाजह मौकफ के साथ सामने नहीं है. और पिछले दिनों सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास से भी टेलीफोन पर बातचीत की है और उसमें उन्होंने यकीन दिलाया है उनको इस बात की कि मामलकत फलस्तीनी कौम के साथ है और मसले फलस्तीन और मजलूम फलस्तीनी कौम के हवाले से जो हमारा मौकफ है, सऊदी अरब का जो मौकफ है आज भी वही है जो मुमलिकत के बानी शाह अब्दुल अजीज के दौर में था. तो इस तरह से सऊदी अरब जो है फलस्तीनी कौम के साथ है और उनके उमंगों और ख्वाहिशात के लिए उठाए गए जो इकदाम होंगे उसमें फलस्तीनियों का वो साथ देगा, ये वाज़ह मौक़िफ़ आया. इससे पहले सऊदी अरब से खारजा की तरफ से भी वाज़ह मौक़िफ़ आया था कि सऊदी अरब डोनाल्ड ट्रंप के मशक़ वस्ता के लिए जो मनसूबे की बदौलत फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान जो मुज़ाकरात की हौसला अफजाई होगी उसके यानी सऊदी अरब अमेरिका की सरपरस्ती में फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई की हिमायत करेगा, ये उन्होंने ये बात कही है. इसके अलावा ये है कि ये मौके भी ऐसे मौके पर सामने आया है जबकि गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर ने ऐसा बयान दिया है उसकी वजह से ये सारे आलमी तौर पर जो अली बरदरी भी जो है उससे मिला जुला दहमल सामने आ रहा है. लेकिन सऊदी अरब कभी भी ऐसे डील की हिमायत वो नहीं करेगा जो फलस्तीनियों के खिलाफ हो. अरब लीग भी देखिए सामने आया है, अरब लीग ने भी अमरीकी सदर के इस मंसूबे की मंसूबे पर गौर करने के लिए आइंदा हफ्ते के रोज जो है इजलास तलब किया है और महमूद अब्बास इस इजलास में शरीक होंगे और उसमें इनका वाकिफ सामने आएगा. इसके अलावा मिस्र में आप देखिए कि जामा अजहर के जो कर्ता हैं उन्होंने अमन मनसूबे कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है इसको. हम इस मसले पर हमास और फतह दोनों तंजीमों का भी मसला है कि एक होने की इनको जरूरत है, लेकिन सऊदी अरब का मौके बड़ी वाजह है. जी
जी, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम साहब, हमारे साथ रहिएगा. प्रोफेसर सलमान ले बैठनी साहब, आप ये बताइएगा कि अमेरिका का लीगल या लेजिटिमेट मैंडेट क्या है कि वो ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज को लीड करने में वो कोई रोल प्ले करे, और वो भी अगर ऐसे यकतरफा हो जिसमें एक पार्टी के नुमाइंदा तो वहाँ पे खड़े मुस्करा रहे हैं और बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इसराइल की बनने का जो दिन था यानी उसके क्याम वजूद में आने के दिन की तरह के सेलिब्रेशन इस दिन के अतबार से भी मनाई जाएंगी, दैट मीन्स कि इसराइल तो बहुत खुश है जबकि दूसरी फरीक साथ नहीं है. सो क्या अमेरिका को अफकोर्स जिसकी एक से है जो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है जिसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है दुनिया से, उसको ऐसा ब्लैक एंड वाइट में कोई बड़ा प्लान या डिसीजन लेना चाहिए दुनिया के सामने अनवील करना चाहिए?
जी, जहाँ तक बात है बैन अल-अक़वामी कवानीन की या किसी इस तरह से लेजिटिमेसी की,
वो तो एज अ रियासत हासिल नहीं है अमरीका को या किसी भी मुल्क को, लेकिन चूंकि अमरीका का असर रसूख है बहरहाल दुनिया की एक अहम ताकत है, आपने भी जैसे कहा, तो और इस मसले में हमेशा से उसका एक झुकाव भी रहा है जो हमने देखा है, तो उस लिहाज से दुनिया की तमाम जो ताकत अहम मुल्क हैं वो अमेरिका से एक मजबूत जो किरदार है वो अदा करने की एक रखते हैं एक्सपेक्टेशन। लेकिन इस मसले में खास तौर पर हमने देखा है कि और इस एडमिनिस्ट्रेशन में खास तौर पर हमने देखा है कि बहुत ही जानबदारी का एक उनसर सामने आया है, खासतौर पर अक़वामे मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं और 1967 की जो सेटलमेंट है उसके हवाले से अमरीका ने जो मौकफ तब्दील किया है और गालिबन 30 साल बाद उन्होंने अपना मौकफ तब्दील किया है और जिन सेटलमेंट्स को अक़वामे मुत्तहिदा बैन अल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी गर्दानता है उसको भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया और बाकायदा तौर पर तस्लीम कर ली गई है। तो ये जो जानबदारी वाला एक अंसर है इससे दो बातें सामने आती हैं, एक तो ये कि जो एक मॉरल लेजिटिमेसी अमरीका को हासिल है वो शायद वो खो रहा है या को खो चुका है, दूसरा ये कि जो जानबदारी का अंसर पहले था यानी बड़े मुसन्निफीन ने इस बारे में किताबें भी लिखी हैं और अमरीकी सियासी जो उफक है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ लॉबीज हैं उनका जो असर है उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इस तरह से इस लेवल तक जानबदारी का अंसर पहले कभी सामने नहीं आया जो अभी देखा जा रहा है, खासतौर पर जब हमने देखा कि यरूशलम को कैपिटल के तौर पर तस्लीम करना और उसको काफ़ी ज़्यादा उसको हाईलाइट करना और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देना और फिर वहाँ अपनी जो सफारतखाना है उसका अफ्तिताह, ये पूरे सारे जितने जेस्चर हैं इससे नज़र आता है कि वो जो मॉरल अथॉरिटी एक अमेरिका को हासिल है रही है वो भी खो रहे हैं, जबकि किसी किस्म की लीगल जो अथॉरिटी है वो तो
पहले से नहीं है,
मेरा नुकसान नजर है कि नहीं है
जी, ऑफ कोर्स उसके लिए नहीं है। डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक साहब, आपकी राय इसके बारे में, क्या अमेरिका जो है अपने तौर ऐसे बड़े फैसले कर सकता है, उसको कोई इस्तेहकाक है?
जी नहीं, बिल्कुल उसको हक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि खुद जो अमेरिका की जो बाई पार्टीशन फॉरेन पॉलिसी है मुझे लगता है कि उनको भी इन्होंने कंसल्ट नहीं किया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये 3-4 लोगों का फैसला है जो सब पे इम्पोज किया जा रहा है और गालिबन वो भी अपने दिल में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक नाकाबिल अमल मनसूबा है जिस पर कोई नहीं होगा, और जैसा कि मैंने कहा था कि बेसिकली अपनी मदद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मदद करने का एक हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। देखिए इस डील में है क्या बुनियादी तौर पर, अगर मैं बता दूँ 4-5 बातें इसमें बड़ी अहम है। यरूशलम का इशू तो सबसे पहली बात है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि ये इसराइल का जो है कैपिटल होगा। अब तक अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि इसके बारे में गुफ्तगू होगी और जो है तो नेतन्याहू इसलिए खुश है कि ओस्लो एकॉर्ड में इजाक राबिन पे नेतन्याहू और उनके ग्रुप लिक्विड पार्टी का बहुत बड़ा इल्जाम ये था, उन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दिया है यासिर अरफात को और फलस्तीनियों को, तो इस वजह से वो खुश थे कि अब जो ये मौजूदा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है नेतन्याहू या उनकी पार्टी का जो स्टैंड था कि जेरूशलम जो है इसराइल का दारुल हुकूमत होगा उसको बांध लिया है। दूसरी बात ये सेटलमेंट्स को उन्होंने ये कहा है जो पूरे मगरबी किनारे पे फैले हुए हैं तो वो इजरायली स्टेट का हिस्सा हो गया, यानी जो एनेक्सेशन है जिसे यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ कहता है कि ये गैर कानूनी है, जंग के जरिए हासिल किया हुआ इलाका जो है या ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो है वो किसी स्टेट का हिस्सा नहीं हो सकती, एनेक्स नहीं की जाती, इसको रिजेक्ट किया, उसको भी उन्होंने मान लिया है। और एक तीसरा सबसे बड़ा मसला यह है कि जो फलस्तीनियों को जो स्टेट दिया जा रहा है वो स्टेट नहीं दिया रहा, उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, फौज नहीं होगी, फिर ये स्टेट क्या होगा, उसके पता नहीं फॉरेन पॉलिसी भी होगी या नहीं होगी।
लेकिन उसके जो अप्रिशिएट करते हैं ना जिस की इस डील को, वो ये कहते हैं कि देखें इसराइल का मुतालबा था कि वो सिक्योर हो तो उसको सिक्योर कर दिया गया है, फलस्तीनियों का मुतालबा था कि उनके पास स्टेट हो तो उनको स्टेट दे दी गई है, साझी तरह से
स्टेट इसे स्टेट कहते हैं, ना फौज होगी ना पुलिस होगी ना कुछ होगी, जब चाहेंगे जब जो चाहेगा इसराइल जब जाएगा जब उनको थप्पड़ मारेगा टैंक दौड़ा देगा बमबारी कर देगा जैसे आज हो वैसे रहेगा, ये तो ये स्टेट उनको मिल ही नहीं रहा है, वो उस तरह के स्टेट एक तरह से मिला ही हुआ उन्हें, स्टेट जो मिला हुआ उसी को वो स्टेट कह रहे हैं,
एग्जैक्टली
उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।
साजिद तारे साहब ये बताइएगा अभी जी, तारे साहब की तरफ आते हैं
छोड़ के भाग गए
जी जी।
नादे स्ट्रिप को छोड़कर वो भाग गए हैं। वेस्ट बैंक में अभी तो उनकी फौज आती जाती रहती है और उसी चीज को वो जो है लेजिटिमाइज करना चाहते हैं। देखिए बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो लिक्विड पार्टी है, जो कंजर्वेटिव पार्टी इसराइल की है, जो वो चाहती थी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको जो है जस्टिफाई कर दिया है। बदकिस्मती है कि दो तीन अरब ममालिक भी जो है अपनी मजबूरियों की वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इलाके की जो दो बड़ी ताकतें हैं, एक तो ईरान है, उसने बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया है, और मैं एक और बता रहा हूँ कि खुद अरबों के लिए बहुत बड़ा खतरा ये डील होने जा रहा है अगर वो इसको मानने जा रहे हैं। जितने खुद अरब दुनिया में जो ओपिनियन जो है अभी जो ईरान के अगेंस्ट है, सीरिया में उसके रोल की वजह से उसके फेवर में जाएगी, टर्की भी बड़ी स्ट्रांगली इसमें आएगा और उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये डील जो उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जो अंधे होकर अमेरिका का साथ देते हैं और वो और ज्यादा कमजोर हो गए और ऐसी ताकतें अरब दुनिया में उभरेंगी जो हमास और जो दूसरे जो जरा इंतहा पसंद जो ग्रुप है उनकी हिमायत करेगी और उनको जो है ज्यादा वो हासिल होगा। महमूद अब्बास
मिलिटेंसी को इनकरेज कर सकते हैं इसमें। साजिद तारिक साहब ये बताइएगा जी, तारिक साहब इस पे जो एनालिसिस आ रही, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है कि ये डील जो है अ डील दैट हैज टू इलेक्शंस रादर देन मिडल ईस्ट पीस, और डिटेल में वो ये लिखते हैं कि शायद ऐसा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू उनको अपना फ्यूचर वो ज़्यादा सिक्योर करना चाह रहे हैं, इस डील से अमन आता हुआ तो नज़र नहीं आता है। अब ये बताइएगा कि इसकी कहना ये चाहिए कि अमेरिका परसू करेगा, अमेरिका नहीं कहना चाहिए, ट्रंप इंतज़ामिया परसू करेगी आगे चल के इस पीस डील को, या बस ये थी कि एक निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन एक प्रोजेक्ट था जिसको अनवील किया और बस खुदा हाफिज़।
देखिए मेरे ख्याल में जब तक ये बिल्कुल इसका कंपैरिजन इस तरीके से ही है कि ये जिस तरह इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान इंडिया और कश्मीर के बारे में कि जब तक बाइलैटरल दूसरी पार्टी नहीं बैठेगी टेबल पर उतनी देर तो ये एक एक प्लान की हद तक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे ओबामा साहब थे, ये एक लम्हा फिक्रिया है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए या पूरी दुनिया के जो कंसर्न लोग हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इसराइल तो वो हमेशा अमेरिका समेत अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि उन्होंने चाहे इसराइल ठीक हो चाहे गलत हो चाहे जिस साइड में भी जो ज्यादती कर रहा हो अमेरिका ने उसको सपोर्ट करना है। मैं उस पर थोड़ा सा मेरी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है, मेरे ख्याल में इन बैलेंस होना चाहिए, मिडल ग्राउंड पे आना चाहिए। फलस्तीनी जो है उनको टेबल पे होना चाहिए था आज भी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में या इनके साथ इतने अरसे से मैं काम कर रहा हूँ कि उनको उनका उनको लेगेसी का बहुत शौक है। लेगेसी के बारे में वो समझते हैं कि ही इज अ बेटर नेगोशिएटर। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उन्होंने कितनी दफा कश्मीर में सालसी के बारे में कहा है, आज तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतनी दफा कोशिश इतनी दफा नहीं कहा होगा मेरे ख्याल में। उसी रेफरेंस से मैं ये, और जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा कि मैंडेट उनको मैंडेट डिलीवर करना है चाहे जिस तरीके से करें, और वो इसमें भी कोशिश करेंगे कि मिडल पॉइंट पे आए, फलस्तीन की साइड देखें, लेकिन मेरे ख्याल में ये सेकंड टर्म की चीजें होंगी क्योंकि अभी जो इलेक्शन नजदीक है बहुत और उनका अपना स्केड्यूल भी बहुत बिजी। मेरे ख्याल में सेकंड टर्म में जाके वो कोशिश करेंगे कि इसका बैलेंस इसको करें और फलस्तीन को भी टेबल पे लाके चीजें माइल्ड करके कोई सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक और उनके स्टाइल से मुझे लगता है कि ही विल ट्राई।
मशरिक वस्ता का मसला हल हो या ना हो, सदर ट्रंप को फायदा पहुंचेगा जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है?
देखिए फायदा तो जाहिर है, अगर फलस्तीन का मसला वो हल करते हैं तो हिस्ट्री में ही विल बी लिखा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप हु वाज अ नॉन ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट रिजॉल्वड इट। मेरे कल में तो उनको फायदा ही फायदा है, ताकि दुनिया याद करेगी कि मिडल ईस्ट का मसला उन्होंने सॉल्व किया। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ड्यूरिंग हिज सेकंड टर्म ही विल गिव अनदर शॉट टू बैलेंस दिस डील।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं चंद सेकंड की, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो मंसूबा है ये ज़्यादातर हमारे पैनलिस्ट का ख्याल है कि ये काबिल अमल नहीं है, और ऑफकोर्स दो जो मुतहरे फरीक हैं उनमें से एक फरीक ने यकसर उसको मुस्तरद कर दिया है, तो इसके इतलाक का तो फिल वक्त कोई सवाल पैदा होता नज़र नहीं आता। लेकिन क्या इंटरनेशनल कम्यूनिटी इससे किसी हद तक या इसके ज़्यादातर पहलुओं से इतफाक़ कर सकती है, और अगर इंटरनेशनल कम्यूनिटी इतफाक़ करती है तो क्या अक़वाम-ए-मुत्तहिदा इसको इंडोर्स करते हुए दोनों दोनों फरीकों को किसी पॉइंट पे लाने की कोशिश कर सकती है? ये सवाल रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने एक ब्रेक के बाद।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम है राउंड टेबल। मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम। बात हम कर रहे हैं सर डोनाल्ड ट्रंप का मशरक़ वस्ती के लिए अमन मनसूबा और रद्द अमल, ना सिर्फ दोनों फरीकों का बल्कि दुनिया भर से जो रद्द अमल आ रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम सुरक्षा ट्रंप के हेड, प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी, और प्रोफेसर सलमान अली बैटनी क़ायदे आज़म यूनिवर्सिटी के साथ उनकी वाबस्तगी इंटरनेशनल रिलेशन के शोबे से, प्रोफेसर इश्तियाक दानी साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है भारत से मिडल ईस्ट इशूज़ एक्सपर्टीज के साथ, और हमें कुछ देर में ज्वाइन करने वाले हैं हसन अब्दुल्ला साहब तुर्की से TRT जन के साथ उनकी वाबस्तगी है, टर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न सीनियर साफ़ी हैं, पाकिस्तान से बुनियादी ताल्लुक है उनका। सो डॉक्टर सलमान अली बैटनी साहब, ये बताइएगा कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी का बड़ा एक कहना चाहिए मोहताद नपतुल्ला खासतौर पर मगरबी ममालिक का वो रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या इसी मंसूबे में कुछ कांट छांट के बाद इसको UN जैसा फोरम किसी सतह पे इंडोर्स करके इन्वॉल्व करना चाहेगा दोनों मुतहरिक फरीकों को?
जहाँ तक हमने रिएक्शन देखा है आपने दुरुस्त फरमाया कि नपतुल्ला है, लेकिन जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि ये काबिल गौर है और हम गौर कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक ने सिवाय बरतानिया के। तो UN में अगर सपोर्ट चाहिए होगी तो कलीदी जो ममालिक हैं उनका किरदार बहुत अहम होगा। अभी तक हमें देखना होगा कि चीन से क्या रद्द अमल आता है, बजूज इसके कि वो अपने एक बहुत ही मुश्किल हालात से उनका सामना है, तो उस हवाले से भी हमने जो P5 ममालिक हैं उनका रिएक्शन देखना होगा। रूस का रद्द अमल भी काफी अहम होगा इस सिलसिले में। तो अगर अक्वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से किसी भी किस्म का इसको लेजिटिमेसी मिलने की चांस है तो मुझे लगता है कि उसमें फिर अमेरिका को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो शायद मुमकिन ना हो। जिस तरह का प्लान सामने आया है और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज सामने आई है तो उसमें अक्सर जो है अक्वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बिल्कुल पसेपुश्त रखा गया है। शायद ये मुमकिन ना हो क्योंकि अभी अगर आप देखें तो खुल के सिर्फ दो ही ममालिक जो हैं वो सामने आए हैं, अमेरिका खुद और बरतानिया जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड में से हैं। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा मुल्क सामने नहीं आया, इवन दो अभी कुछ देर पहले सऊदी अरब के बारे में भी बात हो रही थी तो सऊदी अरब का रिस्पांस भी दो के मस्बत है, लेकिन जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उस तरह नहीं आया जिसे हमें ये लगे कि एक बहुत आउटराइट सपोर्ट है।
सही, ऐसी सपोर्ट नजर नहीं। डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक दानी साहब आपकी राय।
जी देखिए, वर्ल्ड ओपिनियन मैंने अभी कई चैनल की जो वेबसाइट है उनको जाके देखा है। अभी सलमान साहब जो कह रहे थे वही है कि होल हार्टेडली सिर्फ बरतानिया ने सपोर्ट किया और उनकी पुरानी आदत है, और फ्रांस का बहुत अहम है रोल इसमें, और फ्रांस ने बस इतना कहा है कि एक इनिशिएटिव के तौर पर हम इसे वेलकम करते हैं लेकिन इसकी हम केयरफुली स्टडी करेंगे। जर्मनी का भी मोर अंडे से यही रिएक्शन है। अकवाम मुत्तहिदा ये जो उसको करना चाहिए, जाहिर है कि जब तक सिक्योरिटी काउंसिल कोई और रिजोल्यूशन पास करके उसे नहीं देती वो वही कहेंगे जो उनके पास है। तो चुनाचे उन्होंने आर्टिकल 242 का और 136 का किया है। एक बहुत बड़ा जो पहलू इसमें और है जिसकी तरफ मैं निशानदेही कर दूं कि इस डील में मैंने कहा था कि यरूशलम को उनको दिया जा रहा है, इज़राइल को दिया जा रहा है, जो वेस्ट बैंक में जो यहूदी आबादियां हैं वो भी जो है उसी तरह से कायम रहेगी, वो इसराइली रियासत का हिस्सा बन जाएगी, यानी वो उनको नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी एक और बात कही कि जो राइट टू रिटर्न अभी तक है यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक फलस्तीनियों को, कि वो जो स्टेट बनेगा इसराइल का फलस्तीनी रियासत बनेगी वो उसमें लौट सकेंगे और उस इसराइल में भी जा सकेंगे जहां से वो निकाले गए हैं। उस राइट टू रिटर्न को भी जो है ये डील जो है खत्म करता है। ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसकी निशानदेही होनी चाहिए, और गालिबन ये ऐसी वजह है कि जिसे कोई फलस्तीनी जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और यही वजह है है कि महमूद अब्बास ने इमीडिएटली कहा 1000 नो, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलसल आप भी जो है उसकी तरफ जो इशारा करते रहे कि दूसरी पार्टी को शामिल ही नहीं किया गया है, और ऐसा नहीं कि शामिल नहीं किया गया है, उनको ये डील दिया गया था, सिक्रेटली डिलीवर किया गया था, उन्होंने पढ़ के उसी वक्त अपना रिएक्शन दे दिया था। लेकिन ईमानदारी की बात तो यह है कि ये डील जो है, जैसा कि आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का जो हवाला दिया, इसे मिडिल ईस्ट में पीस तो उभरता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन दो लीडर ऐसे हैं, एक इसराइल में और एक अमेरिका में, जिनको उसी तरह उठाना पहुंच सकता है, तो सच्चाई वही है, इसके अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए कि जो रिएक्शन आया है वो मोर ऑर लेस वैसे ही है, हर किसी ने जो है इस डील को लीक भी हो चुका था, दूसरों को दिखाया भी गया था, पहले ही वर्ल्ड ओपिनियन इसके खिलाफ है, उसके बावजूद उसको जो है अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए सामने लाया गया है। इससे ज्यादा इस डील की कोई अहमियत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा, नहीं इस पर कोई गुफ्तगू होने के मुझे चांसेस नजर आते हैं, और इलेक्शन ईयर है, उस इलेक्शन ईयर के बाद ही जो इस पर कोई गुफ्तगू हो सकती है, वरना नहीं हो सकती।
ठीक है, मैं ये अगला सवाल अपने सबके सामने ये रखूंगा कि बहरहाल क्या ये मनसूबा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो मशरक़ वस्ती के ऊपर एक बड़ी डिबेट को, ग्रेट डिबेट को शुरू कर सकता है, जो फिर अल्टीमेटली किसी अंजाम की तरफ लेके जाए, किसी नतीजे की तरफ लेके जाए। हमें ज्वाइन किया है हसन अब्दुल्ला साहब ने, मैं उनका तफसीली तारुफ करवा चुका, सीनियर सहाफ़ी हैं और DRT के साथ उनकी वाबस्तगी है। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप जहाँ पर बैठे हैं वो ईस्ट को भी आप कनेक्ट करते हैं और वेस्ट के साथ भी, तो तुर्की से क्या रद्दमल है, और एक तो हमारा वेस्टर्न ममालिक का रद्दमल सामने आ रहा है, दूसरा ये मुस्लिम ममालिक का भी आ रहा है, लेकिन मुस्लिम मुल्कों का बाहसियत एक इकाई पता चला है कि लाइन ड्रॉप हो गई है। तारण साहब आप ये बताइएगा कि बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को एक तो ये क्रेडिट जाता है कि वो बहुत जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जहाँ पे लोग बड़ा नाप तोल के बोलते हैं, वो ब्लंट अप्रोच के साथ आते हैं, बात होती है, फिर उसके इश्यूज के ऊपर लोग अपनी राय देते हैं। सो क्या ये मंसूबा भी इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े के लिए कोई रोड मैप आगे चल के दे सकता है, किसी ग्रेट डिबेट को शुरू कर सकता है जिसके नतीजे में कोई रोड मैप सामने आए?
मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ये अभी तक तो क्योंकि इसके इंटरनेशनल लेवल पे मेरे नज़र में कोई सपोर्ट नहीं है, इसको मेजॉरिटी जो लोग हैं वो वन साइडेड करार दे रहे हैं। मेरे ख्याल में सेकंड टर्म में अगर इसको ट्रंप साहब दोबारा रिविजिट करके थोड़ा इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो इसमें शायद सपोर्ट शामिल हो, और मुझे मेरे ज़ाती ख्याल में री इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको विजिट करेंगे, वो क्योंकि उनके मैंडेट का हिस्सा था। उन्होंने कई दफा कहा है कि ड्यूरिंग कैंपेन के वो इस मसले को कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी तक क्योंकि इस प्लान की कोई सपोर्ट नहीं है किसी लेवल पे, मेजॉरिटी ऑफ द पावर्स जो है वो दे आर अगेंस्ट इट, और दूसरा कोशिश करेंगे कि फलस्तीन को टेबल पर लेकर आए, वरना उसके बगैर कोई भी इसमें नजर नहीं आता। अभी जिस तरीके से अगर आप इसको डिटेल से पढ़ें तो बिल्कुल ये वन साइडेड प्लान लग रहा है इसमें, जिस तरीके से वो कह रहे, जिस तरह के प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि विन विन सिचुएशन है, इसमें विन विन सिचुएशन बिल्कुल नजर नहीं आती। इसमें विन विन सिचुएशन सिर्फ इसराइल वाली साइड से है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है जो उनका स्टाइल है, जिस तरीके से उनको वो हमेशा समझते हैं, ही इज अ नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, ही इज अ नॉन ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट, तो वो ये भी समझते हैं कि वो सलाहियत रखते हैं इस चीज को निगोशिएट करने में, चीजें टेबल पे लाने के लिए। मेरे ख्याल में सेकंड टर्म में वो इस चीज को रिविजिट करेंगे और फलस्तीन को कन्विंस करेंगे, इसराइल को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। इतनी देर में इसराइल में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनका रिजल्ट सामने आ जाएगा, और सेकंड टर्म में इसको दोबारा रिविजिट करके वो दोबारा एक शॉट कर देंगे कि शायद इस मसले को रिजॉल्व कर सकें।
जी प्रोफेसर सलमान अली बैटनी साहब, आपके ख्याल में कम से कम कोई बड़ी बहस डिबेट इंटरनेशनली शुरू हो सकती है, लाइमलाइट में ये मामला दोबारा आ सकता है इस मंसूबे से?
जी मैं तो ये फील करता हूँ कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से इसको, सदर ट्रंप जिस तरह इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, जैसे आपने कहा भी कि वो डील ऑफ द सेंचुरी कह रहे हैं इसको, तो लाइमलाइट में तो जरूर आएगा, डिबेट होगी, जनरेट होगी, क्योंकि देखिए अभी भी ज़राए अबलाग में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं या जितना भी तजिए हैं तो उसमें तमाम ममालिक का मौकफ सामने आ रहा है। अब देखना ये है कि अब इसके इस मौकफ सामने आने के बाद अमरीकी इंतजामिया इस पे क्या रद्द अमल देती है, उससे भी अंदाजा होगा कि ये डिबेट आगे जा सकती या नहीं जा सकती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह पे जो है ममालिक अपना अपना मौकफ दे रहे हैं। जैसे आपने प्रोग्राम के इब्तदाई में पाकिस्तान के बारे में भी कहा, तुर्की के बारे में भी बताया कि क्या उनका मौकफ रहा है। तो बारहा एक डिबेट तो जनरेट होगी, लेकिन डिबेट में जो नुकते हैं वो पुराने ही रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसे मसाइल हैं, खासतौर पर वेस्ट बैंक का जो मसला है, जो 1967 के बाद सेटलमेंट्स हैं जिनको बैन अल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी करार दिया जा चुका है, और उनको अमरीका ने अभी तस्लीम करने का अंदाजा दिया है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि तस्लीम कर लिया गया है, तो उस पर काफी ज्यादा बहस होगी
जी। प्रोफेसर इश्ताक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जाहिर है जो भले वो जी जी
देखिए, बहस जो आप कह रहे हैं, बहस का तो आगाज हो चुका है और अरब लीग की मीटिंग भी होने जा रही है। तो जो जहां तक इसकी बात है कि एक इस्तराब पैदा हुआ है, स्ट्रिंग तो है, इसमें कोई शुभा नहीं है, लेकिन सारी चीजें जो मतवक्के अंदाज में जो है एक्सपेक्टेड लाइन पे जो है सामने आ रही है, और मुझे लेकिन ये नहीं लगता कि जब तक अमेरिका जो है और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप अगर वो दोबारा भी जीतते हैं, जब तक वो बड़ी ड्रास्टिक तब्दीली इसमें नहीं करेंगे, ये कामयाब नहीं है। देखिए जॉर्डन और दोनों, उसका रिएक्शन भी जो सामने आएगा, और उन्होंने टोटली इसको रिजेक्ट कर दिया है कि ये तो कोई सवाल ही नहीं होता कि कोई इसको एक्सेप्ट करे, जबकि जितने अरब ममालिक है मिस्र के साथ दूसरा ये मुल्क है जिसने इसराइल के साथ जो है ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, और उन्होंने खासतौर से कहा है कि ईस्ट जेरूशलम के बगैर जो है उस मसले को हल किए बगैर कोई जो है मसले का हल नहीं हो सकता। तो डिबेट तो पैदा होगा, बहस जरूर होगी, लेकिन बहस का नतीजा भी तकरीबन सामने आ चुका है। जाहिर है कि लोग इसको इस शक्ल में जिस शक्ल में पेश किया गया है उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि राइट टू रिटर्न वाले पे ये कहे कि भाई वो लोग रिटर्न तो हो, लेकिन जो फलस्तीन पे रियासत बन रही हो उसमें हो, इसराइल में नहीं जाए, इसलिए इसराइल उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जो मशरकी यरूशलम का मामला है, मगरबी किनारे पे जो सेटलमेंट्स है उनका जहां तक इशू है, और तीसरी जो चीज यह है कि फलस्तीन की सिर्फ पुलिस होगी, फौज नहीं होगी, इसके बगैर तो मुझे नहीं लगता कि कोई फलस्तीनी और जो दूसरे उनके जो अरब सपोर्टर्स हैं इसके बगैर जो उसे जो है इस हल को कबूल करें, ये मुमकिन नजर नहीं आता है।
हमें उसामा जावेद साहब ने ज्वाइन किया है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं मशरक वस्ता के अंदर, मीडिया इंस्टीट्यूशन के लिए सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रोड मैप या उनका जो जिसको वो सेंचुरी की बेहतरीन डील कहते हैं, डील ऑफ द सेंचुरी मिडिल ईस्ट के लिए, मिडिल ईस्ट से क्या रिस्पॉन्स है उसके लिए, मैसेज का भी, गवर्नमेंट्स का भी? जी उसामा जावेद साहब, उसामा हमारे साथ हैं लेकिन उनको हमारी आवाज़ गालबन जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। साजिद तारर साहब, ये बताइएगा क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये जो प्लान डील जो है, जी बताया गया कि है लाइन पे। उसामा आप मुझे सुन सकते हैं?
जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही
है। उसामा जावेद साहब, आप अपनी एनालिसिस भी दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन भी दीजिएगा, कल के बाद से जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पीस प्लान अनाउंस किया है, क्या रद्द अमल आ रहा है आपके सामने?
देखिए फलस्तीनी चाहे वो गजा में रहते हो, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो या मशरकी जेरूसलम में हो, उनके लिए एक तमाम डील की कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उनके लिए वही है जो उनकी जिस सूरत हाल से वो गुजर रहे हैं, आज से नहीं गुज़श्ता कई दहाइयों से। ये कोई ना पहली डील है और ना पहला रोड मैप है। क्या आपको याद है कि सदर बुश ने भी एक रोड मैप दिया था, उससे पहले बिल क्लिंटन ने भी एक रोड मैप दिया था, उससे पहले बुश सीनियर का भी एक रोड मैप रहा। तो ये तमाम वो रोड मैप से जो आते और जाते रहे, इस रोड मैप की खसूसियत ये है कि सदर ट्रंप ने पहली दफा फलस्तीनियों को इस मामले से निकाल ही दिया है। यानी ये एक ऐसा पीस प्लान है जिसमें दूसरी जानिब की तरफ से उनकी किसी किस्म की नुमाइंदगी की जरूरत ही नहीं समझी गई। तो ये एक तरह से हमारे एक फलस्तीनी दोस्त का कहना है कि ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो जो दो रियासत का तस्वुर था कि फलस्तीन और इसराइल दो रियासतें होंगी, उसको तकरीबन इस खैरबाद कहना जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि अब दो रियासतों की तरफ जो है रुझान पाए जाते जिन लोगों में पाया जाता है वो वही लोग हैं जिनको वेस्ट बैंक में या गजा में सैलरीज मिलती हों। जब आप फलस्तीनी नौजवानों से बात करें तो उनके नजदीक ये दो रियासतों का तस्वीर अब तकरीबन खत्म हो चुका है और वो यही कहते हैं कि भाई अगर हमें यही रहना है, और सिवाय इसके कि जैसे कि बहुत सारे मुबसरीन ने कहा कि स्विस चीज से इसको मुमासलत दी कि स्विस चीज दे दी गई है जिसमें चीज जो है वो इसराइलियों के पास है और जो सुराख है वो फलस्तीनियों को दे दिए गए।
सही। तो अब हमारे साथ ही साजिद अरर साहब, ऑन अ लाइटर नोट मैं ये पूछना चाहूँगा कि कल जब ये प्लान अनाउंस हो रहा था तो एक लीडर यानी प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर इम्पीचमेंट का सामना है, मुआवजे का सामना है। दूसरे लीडर उनको बाकायदा उसी दिन जो है वो उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होगी करप्शन के इल्ज़ाम में। सो स्टिल ये डील होगी या एक दूसरे के लिए कुछ ढील है या एक दूसरे के लिए कोई डील है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ये बात मेंशन करना जरूर समझूंगा कि मुसलमानों का मसला चाहे फलस्तीन का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे इराक में, चाहे ईरान में, तो मुसलमान विक्टिम जो है वो सिर्फ इस वजह से हैं कि दे आर नॉट टुगेदर, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज, अपना होमवर्क में सबसे पीछे हैं, लीडरशिप का फुकदान है, नेशनलिज्म का फुकदान है, कई चीजें हैं, इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं। जिस तरीके से आज जिस तरह अभी आपके पार्टिसिपेंट जो थे वो फरमा रहे थे कि उनकी जरूरत नहीं समझी गई कि उनसे फलस्तीनियों से पूछा जाए या कुछ किया जाए, मैं एग्री करता हूं, लेकिन इस पे मैं ब्लेम करूंगा इस बात पे कि फलस्तीनी भी ऑर्गेनाइज नहीं है, फलस्तीनी भी करप्शन में, हमास की भी उनकी भी दास्ताने हैं, दूसरे ग्रुपों की भी हैं, वो अब एड पे इतने अरसे से बैठे हैं और मुसलसल इसी चीज पे चल रहे हैं, इजिप्ट का साथ नहीं है, अभी कश्मीर के मसले पे मिडल ईस्ट के 5 कंट्रीज ने मोदी साहब को बुला के अपने हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं, कश्मीर में आज कर्फ्यू है, तो ये सारी दुनिया का मसला है, ये सारी मुसलमान उम्मा का प्रॉब्लम है समझता हूँ। और जब आपके अमाल या आपके डीड या आपने सारी चीजें इस तरह की होगी तो आप जो दूसरी पार्टियां हैं वो जरूरी नहीं समझेंगी कि आप उसका हिस्सा हैं या आप आपको टेबल पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूँ इम्पीचमेंट
आपसे जरा थोड़ा सा इख्तलाफ
करूंगा।
फलस्तीन का मामला इन तमाम जगहों से काफी मुख्तलिफ है। फलस्तीन में जो आपने बात की कि फलस्तीन में मुसलमान यकजा नहीं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिका बहादुर ने जब उनसे कहा कि जी आपके पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो उन्होंने हमास नामी तंजीम को साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए मुंतखब किया गया और अमेरिका ने उस तंजीम को न सिर्फ शन किया बल्कि तमाम एड भी बंद कर दी। फलस्तीन जो है वो कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है, उसकी मुमासलत बाकी जगहों से इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि 1967 के बाद से लेके अब तक वहां पे एक गासिबाना कब्जा रहा है इसराइल का। वहां पे एक ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन प्रिजन जो है गाजा को कहा जाता है, जिसमें ना उनकी फजाई हदूद है, ना समंदरी हदूद है, ना उनकी नकलो हमल पे किसी किस्म की आजादी है। तो फलस्तीनियों को इस सूरत हाल से दो चार करने की बहुत बड़ी वजह मगरबी ताकतें बिशमूल अमरीका है। अमरीका का यहाँ पे ये कहना कि हम इसराइल के सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसराइली वजीर आजम का ये कहना कि सदर ट्रंप से अच्छा इसराइल का दोस्त व्हाइट हाउस में कोई नहीं रहा, उसका यकीनन ये इंडिया देता है कि अमरीका और तमाम मगरबी ताकतें इस वक्त इसराइली हुकूमत के साथ खड़ी हैं और फलस्तीनियों के साथ कोई भी नहीं है।
आखिर मेरे पास आखिरी दो मिनट में, एक मिनट
उसमें पहले कह चुका हूं कि मैं आई एम क्रिटिकल ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली द अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इसराइल। मैं पहले मेंशन कर चुका
हूं,
फिर भी मैं ब्लेम करूंगा फलस्तीनियों को, मैं फिर भी ब्लेम करूंगा कि वो आज तक, ये आज का मसला नहीं है फलस्तीन, ये फलस्तीन का प्रॉब्लम मेरी पैदाइश से पहले का प्रॉब्लम है ये, लेकिन इस पे मैं ब्लेम ये करूंगा कि वो आज तक इकट्ठे क्यों नहीं। आप जो मिसाल दे रहे हैं हमास की, वो तो अख्वानुल मुस्लिमीन की इजिप्ट में भी वही थी कि अख्वानुल मुस्लिमीन इलेक्शन जीत के आए थे आगे और उसके बाद ये कि अमेरिका को वो नहीं एक्सेप्टेबल थे, लेकिन इस पे मैं फिर भी अमेरिका को ब्लेम नहीं करूंगा, ये हमारे अपने बनाए हुए एक्सक्यूजेस हैं कि हर चीज में CIA को ब्लेम कर देना, हर चीज में अमेरिका को ब्लेम कर देना, पाकिस्तान में जो चीज हो वो कहते हैं अमेरिका है या रा है, लेकिन इनको अब इस तरीके से अपना
मैंने वैसे ब्लेम गेम आखिरी जो मैंने सवाल सबके सामने रखना था और अनफॉर्चुनेटली नहीं रख सका वो यही था कि जो मुस्लिम दुनिया है उसका रद्द अमल इकाई की सूरत में आना चाहिए या जाहिर है वो अपने अपने मफादात को सामने रखते हुए पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर करें ना कि मजहब की बुनियाद पर, लेकिन ये क्वेश्चन ना हो सका। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ थे। डॉक्टर सहर खान ने हमें ज्वाइन किया, प्रोफेसर सलमान बैटनी, प्रोफेसर इश्ताक दानिश, जनाब साजिद तारर साहब और हसन अब्दुल्ला साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। असद हसन को और असफर इमाम को इजाज़त दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से पेश किया जा रहा है।
मुल्की सतह पर और अमरीकी रियासत आयोवा में जहां डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार इस साल सदारती इंतखाबात में कॉकस की हिमायत हासिल करने के लिए मुहिम का आगाज कर रहे हैं, राय आमा के ताज़ा तरीन जायजों से जाहिर हुआ है कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवारों में वर्मोंट के सेनेटर बर्नी सैंडर्स इब्तदाई मुकाबले में सबसे आगे हैं। आयोवा के कॉकसेस को डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए बहुत अहम तसव्वुर किया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के जिम मेलोन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिर मंसर।
So let's bring in Senator Bernie Sanders.
Bernie Sanders उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आयोवा कॉकसेस के आखिरी लम्हात में आने वाली तेजी उन्हें फतह से हमकनार कर देगी।
So what we are saying unabashedly, unapologetically, is yes, our administration will.
चुनांचे हम बिना किसी घबराहट, बिना किसी माजरत के कह रहे हैं कि हाँ, हमारी इंतजामिया इस मुल्क में मेहनत कशों की इंतजामिया होगी। मैं इसी तबके से आया हूँ और खुद यही हूँ। सैंडर्स को तवक्को है कि वो अब तक के सबसे नुमाया उम्मीदवार जो बाइडन को शिकस्त देकर सरे फहरिस्त आ जाएंगे। बाइडन बहुत अरसे से कह रहे हैं कि नवंबर के इंतखाबात में सदर ट्रंप को शिकस्त देने और मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए वो सबसे मजबूत डेमोक्रेट हैं।
The next president is going to inherit a country that's divided and a world in disarray.
आइंदा आने वाले सदर को एक मुनकसिम और अफरातफरी की शिकार दुनिया का सामना होगा और बसद एहतराम मैं कहूँगा कि मनसब हासिल करने के बाद तरबियत का कोई वक्त नहीं होगा। ये फौरी जानना होगा कि नए सदर को क्या करना है। ये अल्फाज थे जो बाइडन के। आयोवा में एक और मजबूत उम्मीदवार मैसाचुसेट्स की सेनेटर एलिजाबेथ वॉरन भी हैं जो मुंतखब होने की सूरत में बड़े पैमाने पर तब्दीली के वादे कर रही हैं।
If there is a decision to be made in Washington, I guarantee it has been influenced by money.
अगर वॉशिंगटन में कोई फैसला होना है तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि इस पर पैसे का असर होगा और अगर आपको इसे दुरुस्त करना है तो फिर आप महज कतर बेवंद नहीं कर सकते। आप कुछ मरम्मत इधर कुछ उधर नहीं कर सकते। आपको ढांचे में बड़ी तब्दीलियां करना होंगी। सफ़े अव्वल के उम्मीदवारों में इंडियाना के मेयर पीट बुटेजिज भी हैं जो सियासत में नस्बतन नौ आमोज हैं।
I believe the purpose of the presidency is not to glorify the president. It is to empower and unify the American people to get big things done.
और मेरा ये ख्याल है कि सदारत का मकसद ये नहीं कि सदर को अजमत दी जाए बल्कि इसका मकसद अमरीकी आवाम को मजबूत बनाना और मुत्तहिद करना है ताकि बड़े काम सर अंजाम पाएँ और मैं इसीलिए आपकी हिमायत चाहता हूँ और आज रात हमारा यही मकसद है। सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई की वजह से चार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में मौजूद होने के बजाय सेनेट की कार्रवाई में शरीक हैं। इनमें सैंडर्स, वॉरन, कोलोराडो के सेनेटर माइकल बेनेट और मिनेसोटा की सेनेटर एमी क्लोबचर भी शामिल हैं। वो कहती हैं,
We're going to sit there till the very end. We're going to listen to the evidence. And as I noted, I can do two things at once. I'm a mom and I will find one way or another.
हम वहां आखिर तक बैठेंगे। हम शहादत देने वालों को सुनेंगे और जैसा कि मैंने बावर करवाया, हम दो काम एक साथ कर सकते हैं। मैं एक माँ हूँ और मैं सदर के इंतखाब के लिए मुकाबले का रास्ता भी निकाल लूँगी। बाईपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के जॉन फोर्टियर कहते हैं कि अगरचे आखिर में सैंडर्स की मकबूलियत में इजाफा हुआ है تاہم رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ آئیووا میں مقابلہ بے مثال ہوگا. ان کے الفاظ:
Democratic voters are really just starting to focus on this, and that's why I do think there is some room for change. The voters on the ground in Iowa and the voters nationally have some sense of these
Democratic
candidates.
Democratic voters have really started to start focusing on this. And that's why I think there is some room for change. And that's why I do think there is some room for change. And that's why I do think there is some room for change. And that's why I do think there is some room for change. And that's why I do think there is some room for change. And that's why I do think there is some room for change. And that's why I do think there is some room for change. کہ ڈیموکریٹس کے ذہن میں سب سے بڑا خیال یہ ہے کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینی ہے. انتخابات کے طویل ابتدائی مراحل میں آئیووا کاکسز پہلا مرحلہ ہیں. اس عمل کے مکمل ہونے پر ڈیموکریٹک پارٹی کے حتمی صدارتی امیدوار کا انتخاب ہو جائے گا، جس کی نامزدگی کا اعلان پارٹی کے کنونشن میں کیا جائے گا جو جولائی میں ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی میں منعقد ہوگا. مدثرہ منظر، Voice of America, Washington.